हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्णव ने मन ही मन कुछ सोचा और अपने हाथ में मौजूद आकाश की फोटो देखने लगा। अजीब सी उदासी और दर्द उसके चेहरे पर उभर आए। अर्णव जब नीचे आया, धृति जा चुकी थी। शायद उसके सवालों से बचने के लिए वो आज अकेले ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। ऑफिस में भी धृति उससे बचती नजर आई। रात में भी वो कमरे में जाते ही सोने के लिए लेट गई। 2-3 दिन यही चला। धृति अर्णव से बचती रही, कहीं वो उससे कुछ सवाल न पूछ ले, पर अर्णव सब जानते समझते हुए भी शांत बना रहा। उसने दोबारा धृति से कोई सवाल नहीं किया और बिल्कुल सामान्य व्यवहार किया, या यूं कहें कि उसका व्यवहार धृति के लिए कोमल हो गया था। धृति को तकलीफ पहुंचाना तो पहले ही छोड़ चुका था, अब भूलकर भी ऐसा कुछ न करता और कहता जिससे धृति के मन को ठेस पहुंचे। धृति भी उस बात को भूलकर वापस सहज हो गई। अर्णव का विश्वास अब पक्का हो चुका था कि धृति गुनाहगार नहीं, और अपने पिछले व्यवहार पर वो काफी शर्मिंदा भी था। हालांकि अभी पूरी हकीकत उसके सामने नहीं आई थी, पर धृति को लेकर उसके सोचने का नज़रिया, मानसिकता बिल्कुल बदल चुकी थी। कुछ दिन और बीत गए थे। अर्णव का व्यवहार अब धृति के लिए पूरी तरह से बदल गया था। वो गुस्सा, वो नफ़रत, ये जानते ही अपना अस्तित्व खो चुके थे कि धृति उनकी हकदार नहीं। अब अर्णव के दिल में धृति के लिए पनपने वाले एहसास न सिर्फ और गहरे हो चुके थे, बल्कि गाहे बगाहे उसके व्यवहार में झलकने भी लगे थे। ये पता चलते ही कि धृति आकाश की कातिल नहीं, अर्णव जो जाने कब से अपने दिल को उसके तरफ झुकने से रोकता आया था, अब उसने अपने दिल को सभी बंदिशों से आज़ाद कर धृति को बेपनाह मोहब्बत करने की इजाज़त दे दी थी। और इसी का असर था कि जिस दिल में पहले धृति के लिए बे इंतहा मोहब्बत रहा करती थी, अब वहाँ धृति के लिए बेपनाह मोहब्बत अपना घर बना चुकी थी। अर्णव, जो पहले अपनी परवाह को अपने गुस्से और कड़वी बातों के पीछे छुपाता था, अब वो उस परवाह में लिपटे प्यार को खुलकर जाहिर करता था। हालांकि अब भी उनके बीच एक अनदेखी सी दीवार मौजूद थी। जो उसने धृति के साथ किया, उसे भुलाकर न वो धृति के साथ पूरी तरह से सहज हो पा रहा था और न ही धृति उस पर विश्वास करके उसके साथ खुल का रही थी। अर्णव के इस बदले व्यवहार के कारण उसकी परेशानियां और उलझनें बढ़ गई थीं। अर्णव ने दोबारा उससे कोई सवाल नहीं किया था, इस बात से धृति सुकून में थी और धीरे धीरे उस बात को भूल भी गई थी। अर्णव ने अभी कबीर को इस बारे में कुछ नहीं बताया था, और अब वो जी जान लगाकर धृति के अतीत से जुड़े राजों पर से पर्दा उठाने में लगा हुआ था, पर अब तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा था। माधुरी भी अर्णव के व्यवहार में आते बदलाव देखकर हैरान थी, पर वो अब धृति को अच्छे से ट्रीट करता है, ये देखकर उसकी नाराज़गी अर्णव के प्रति कुछ कम हो गई थी। सबके मन में कुछ सवाल और उलझने थीं जिनके साथ वे आगे बढ़ रहे थे। अर्णव इस वक्त अपने कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। आज फिर उनके मिस्टर बख्शी के साथ मीटिंग थी, और इस बार मीटिंग उनके ऑफिस में थी, और मीटिंग के लिए अर्णव नहीं कबीर गया था। कबीर ने ऑफिस पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट को अपनी पहचान और अपॉइंटमेंट के बारे में बताया तो उसने किसी को फ़ोन लगा दिया। कबीर वेटिंग एरिया में खड़ा इंतज़ार कर रहा था, तभी एक मीठी सी आवाज़ उसके कानों से टकराई। हाय मिस्टर हैंडसम, तुम्हें सर ने कैबिन में बुलाया है। कबीर ने आवाज़ सुनकर पलट कर देखा। उसकी नज़रें जैसे ही सामने खड़ी लड़की पर पड़ीं, उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं। वो आंखें फाड़े और मुंह खोले हक्का बक्का सा उसे देखता ही रह गया। सामने फॉर्मल पैंट और वाइट फिटेड शर्ट पहने धृति खड़ी थी। बाल खुले थे और कंधे पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर मेकअप के साथ दुनिया भर का गुरूर समेटे हुए वो होठों के बीच पेन दबाए अजीब निगाहों से कबीर को देख रही थी। कबीर सामने खड़ी धृति और उसके इस अनोखे रूप को देखकर सदमे में जा चुका था। तभी धृति ने अपने होठों के बीच से पेन निकाला और लबों पर सेगेक्टिव मुस्कान सजाए, आंखों में चाहत की कशिश भरते हुए बड़ी ही अदा से बोली, आई नो कि मैं बेहद हसीन हूँ। मुझे एक बार नज़र भर देखने के बाद मुझ पर से निगाहें हटाना आसान नहीं, और मेरी बस एक झलक किसी को भी अपना दीवाना बनाने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे मन में भी मुझे लेकर चाहत पनप गई होगी। तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा कि इतनी हसीन, दिलकश, हॉट और सेक्सी लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है। पर ये ऑफिस है मेरी जान, यहाँ मुझे इस तरह से घूरना किसी को अलाउड नहीं। हाँ, अगर तुम चाहो तो हम ऑफिस के बाहर मिल सकते हैं। मुझे तुम पसंद आए, एक टेस्ट ड्राइव लेना चाहोगे मेरे साथ? फुल एंटरटेनमेंट मिलेगा, पूरी तरह सेटिस्फाई करूंगी तुम्हें। बस बदले में तुम मेरी कुछ फाइनेंशियल और फिजिकल नीड्स पूरी कर देना। धृति ने कबीर के करीब आते हुए उसके दिल को अपनी हथेली से सहलाया। बेचारे कबीर को तो अपनी आंखों और कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने धृति खड़ी है और ऐसी बेशर्मी भरी, अश्लील और वाहियात बातें कर रही है, जिसे सुनकर ही उसके कानों से खून आने लगा था। पहले तो वो स्तब्ध सा उसे देखता रहा, पर जैसे ही धृति उसके करीब आई, कबीर चौंकते हुए अपने होश में लौटा। उसने तुरंत हड़बड़ाहट में धृति की बांह पकड़कर उसको खुद से दूर किया। एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट फोन कॉल करना है। कबीर का यूं उसे दूर करना शायद धृति को पसंद नहीं आया। उसने मुंह बनाकर उसे घूरा। वहीं कबीर तुरंत एक तरफ कोने में चला आया और बिना एक पल गंवाए अर्णव को कॉल लगा दिया। बेचारे कबीर का सर चकराने लगा था ये सब देखकर। उसने किसी तरह खुद को संभाला और अर्णव के कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगा। कुछ ही सेकंड बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव हुआ और अर्णव की आवाज आई। हेलो अर्णव, भाभी कहाँ है? कबीर ने बिना बात घुमाए सीधे धृति के लिए सवाल किया, जिसे सुनकर पहले तो अर्णव चौंक गया, फिर बेफिक्री से बोला, और कहाँ होगी? अपने कैबिन में होगी, एक बार चेक करना। दूसरी तरफ से कबीर की परेशान सी आवाज आई। उसकी ये बात सुनकर अर्णव चिढ़ गया, पर उसके शब्दों में झलकते हड़बड़ाहट और परेशानी के भावों को पहचानते हुए अर्णव ने रिमोट पर बटन प्रेस करके दोनों कैबिन के बीच के पर्दे को हटाया। इसके साथ ही उसकी नज़र सामने बैठी धृति पर गई, जो लैपटॉप पर कुछ कर रही थी। सामने ही बैठी है मेरे। अर्णव, मुझे वीडियो कॉल पर भाभी को दिखा। क्या हुआ है कबीर, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू? कह रहा हूँ ना मैं कि वो मेरे सामने ही बैठी है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? और अचानक हुआ क्या है तुझे? धृति कहाँ है, ये सवाल क्यों कर रहा है तू? अर्णव आखिर में खींचते हुए बोला। उसके सवालों को सुनकर कबीर ने सामने कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी धृति को देखते हुए कहा, मैं तुझे वीडियो कॉल कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर, कुछ दिखाना है मुझे जिसे देखकर तेरे भी होश उड़ जाएंगे जैसे मेरे उड़ गए हैं। ऐसा क्या दिखाना है तुझे? तू सवाल जवाब बाद में करियो यार, अभी जितना कहा है बस उतना कर, कबीर ने झल्लाते हुए कहा और उसे वीडियो कॉल की रिक्वेस्ट भेज दी, जिसे अर्णव ने मुंह बनाते हुए एक्सेप्ट किया। और वो कुछ कहने ही वाला था, उससे पहले ही उसकी निगाहें स्क्रीन पर नजर आ रही लड़की और खासकर उसके चेहरे पर पड़ीं। कबीर ने कैमरा धृति की तरफ किया था और अब अर्णव उसके सामने खड़ी धृति को साफ साफ देख पा रहा था, जो कबीर को देखकर कभी मुस्कुराते हुए आंख मारती तो कभी फ्लाइंग किस देते हुए इशारे से पास बुलाती।
अर्णव को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ कि उसके सामने धृति खड़ी है, वो भी बिल्कुल अलग रूप और अंदाज में। उसने आंखों की पुतलियां फैलाए स्क्रीन पर दिखती धृति को देखा, फिर निगाहें घुमाकर सामने अपने कैबिन में बैठी धृति को देखा। दोनों का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और दिमाग में बहुत सी बातें चलने लगीं। उसका दिमाग दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा था और धीरे धीरे उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे थे। उसने मन ही मन आकाश की डायरी में लिखी बातों को याद किया, जहां उसने धृति का जिक्र किया था। जो तस्वीर उसे मिली थी, उससे दोनों धृति को कंपेयर किया। मन में सवालों का तूफान सा उठा, पर कुछ बातें अब साफ होने लगीं। देखा तूने, हू बहू धृति जैसी दिखती है, पर नेचर बिल्कुल अलग है। पहली ही मुलाकात में मुझे अपने साथ बाहर आने को कह रही है। इन शॉर्ट, एक रात के लिए मुझे इनवाइट कर रही है और बदले में मुझसे पैसे और अपनी इच्छाओं को पूरा करने को कह रही है। अर्णव के कानों में कबीर के शब्द पड़े, तब कहीं जाकर वो अपनी गहन सोच से बाहर आया। उसने एक नज़र धृति को देखा, फिर गंभीरता से बोला, ये धृति नहीं है, उसकी कोई हमशक्ल है। अगर मेरा शक सही है तो ये वो लड़की है जिसका जिक्र आकाश की डायरी में था। मुझे इस लड़की के बारे में जानकारी चाहिए, तो इसके लिए तुझे जो करना पड़े कर, पर मुझे इस लड़की की पूरी जन्म कुंडली निकलवा कर दे। तुझे शक है कि ये लड़की जो धृति जैसी दिखती है, उसने आकाश के साथ वो सब किया था? अर्णव की बात सुनकर कबीर ने चौंकते हुए हैरानी से सवाल किया। जितना वो हैरान था, अर्णव उतना ही शांत था। उसने सहजता से हामी भरते हुए कहा, हाँ, पर ऐसा कैसे मुमकिन है अर्णव? मैं जानता हूँ कि तू क्या सोच रहा है। बहुत से सवाल अभी मेरे मन में भी हैं, जिनके जवाब ढूंढने की कोशिश मैं बीते कई दिनों से कर रहा हूँ, पर जवाब नहीं मिल रहा। लेकिन अब लगता है कि मेरे हर सवाल का जवाब ये लड़की है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे इस लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए कि कौन है ये, कहाँ से है, इसकी पिछली जिंदगी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, और साथ ही ये भी पता लगा कि धृति से इसका क्या रिश्ता है। हो ना हो, आकाश की मौत की जिम्मेदार यही है, और यही वो राज है जिसे धृति मुझसे छुपा रही है। कुछ भी कर, पर मुझे इस लड़की के बारे में हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, मैं अभी ही अपने आदमी को काम पर लगाता हूँ और देखता हूँ अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ तो। अर्नव ने हामी भरी और फोन काट दिया। उसके बाद उसने सामने बैठी धृति को देखा और खुद से ही बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हारे राज पर से पर्दा उठाकर सच्चाई को सामने लाऊंगा। मुझे मेरे हर सवाल के जवाब मिलेंगे। अब बस थोड़ा और इंतजार और मैं उस उलझी पहेली को सुलझा लूंगा। अर्नव ने मन ही मन कुछ सोचा और वापस काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ कबीर ने गहरी सांस छोड़ी और उस लड़की, जिसे आप जानते हैं, के पास आकर मुस्कुराकर बोला, क्या मैं इस हसीना का नाम जान सकता हूँ? सृष्टि, सृष्टि अवस्थी, सृष्टि ने इतराते हुए जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर कबीर एक बार फिर चौंक गया। उसके मन में कुछ बातें घूमने लगीं। अपने शक की पुष्टि करने के लिए उसने जरा हिचकिचाते हुए सवाल किया, सृष्टि, क्या तुम्हारी कोई बहन भी है? नहीं, सृष्टि ने साफ इनकार कर दिया और मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। उसका सवाल सुनकर जैसे ही वो चिढ़ी, कबीर का शक यकीन में बदलने लगा। उसने मन ही मन कुछ सोचा और उसके पीछे पीछे चलने लगा।